खबरों से भरे न्यूज 18 के इस पॉडकास्ट में मैं अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यूज पॉडकास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं देश में कोरोना का हाल और मौसम का मिजाज। इसके अलावा नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की भी बात होगी इस पॉडकास्ट में। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यह जानकारी शुक्रवार को worldometer.info पर आई। यह वेबसाइट दुनिया भर के कोरोना मरीजों के आंकड़े इकट्ठा करती है। इसके मुताबिक शुक्रवार रात भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,825 हो चुकी थी। इस महामारी से देश में करीब 1,45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सक्रिय मामलों की संख्या तकरीबन 3.25 लाख है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन स्वेच्छा पर आधारित होगा। जिसे भी टीकाकरण करवाना है उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दरअसल मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन से संबंधित पूछे जा रहे सवालों की एक लिस्ट बनाई थी जिस पर एक एक कर जवाब दिया गया है। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक कई वैक्सीन अपने फाइनल स्टेज के विभिन्न चरणों में हैं। भारत बायोटेक ICMR समेत 6 वैक्सीन का जिक्र किया गया है। देश के उत्तरी क्षेत्र के मैदानी इलाकों में सर्द हवा चलने के कारण ठंड बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि अगले सप्ताह के दौरान उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और एक हफ्ते बाद ही थोड़ी सी राहत की उम्मीद की जा सकती है। विभाग ने 24 से 30 दिसंबर तक के अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। विभाग ने 24 से 30 दिसंबर तक के अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। पहले सप्ताह के दौरान देश के शेष हिस्सों में तापमान सामान्य से करीब या थोड़ा अधिक रहने की संभावना है। IMD ने कहा, पहले सप्ताह के पहले हिस्से के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर बढ़ जाएगी और अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वादा किया कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा, क्योंकि सरकार महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, अनुसंधान और विकास में निवेश और टेलीमेडिसिन के लिए व्यापक कौशल का विकास महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इसके साथ ही आजीविका संबंधी चुनौतियों को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के नए परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। सीतारमण ने ये बातें CII द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने सुझाव भेजिए ताकि हम एक ऐसा बजट बना सके जैसा इससे पहले कभी नहीं आया। भारत के 100 वर्षों में ऐसा बजट नहीं देखा गया होगा जैसा कि महामारी के बाद आएगा। उत्तर प्रदेश के सियासत में कदम रखने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के नाम का ऐलान किया। प्रदेश सचिव मीनाक्षी श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जाधव के मुताबिक कार्यकर्ताओं ने भी संजय सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग की है। आप यूपी में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये खबरें आप न्यूज 18 के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। बिहार की नीतीश सरकार ने 4 जनवरी 2021 से सभी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। स्कूलों के साथ कोचिंग संस्थानों को भी संचालित करने की इजाजत मिल गई है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक सीनियर सेक्शन यानी 10वीं और 12वीं की क्लास लगाई जाएगी। स्कूल आने वाले बच्चों को सरकार मुफ्त में मास्क देगी। सरकार ने स्कूलों के साथ हॉस्टल को भी खोलने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने फिलहाल सिर्फ सीनियर सेक्शन की क्लास लगाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि 15 दिनों की समीक्षा के बाद जूनियर क्लास को खोलने पर कोई फैसला किया जा सकता है। नए कृषि कानून पर जारी सियासी तकरार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को यकीन दिलाया कि MSP खत्म नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की हर बात का ख्याल रखा है, हमने किसानों की उन मांगों को पूरा किया है जिन पर वर्षों से मंथन चल रहा था। PM शुक्रवार को भोपाल के रायसेन में आयोजित किसान सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा, मेरी इन बातों के बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसानों के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए, हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। हम नए रास्तों पर चलेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी जी के संबोधन में सबसे बड़ा झूठ यह है कि गन्ना किसानों को 16 करोड़ रुपए की मदद की जा रही है। यह मदद नहीं, शुगर मिलों पर किसानों का बकाया है जिसका भुगतान शुगर मिल को करना था। अगर सरकार ये रुपए दे रही है तो यह शुगर मिलों की मदद मिल रही है, न कि किसानों को। अगर सरकार इसे इंसेंटिव रूप में देती तो किसानों को लाभ होता। मोदी जी भंडारण हेतु ढांचे की बात कर रहे हैं, लेकिन अपील कारपोरेट से की जा रही है। इसका मतलब सरकार किसानों को नहीं, एग्री बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, खेती में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। टिकैत ने कहा कि नवरत्न कंपनियों के निजीकरण के बाद सरकार की निगाह अब खेती के निजीकरण पर है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ चर्चा की बात गलत है, क्योंकि आज किसान संगठनों से उनकी कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का प्रधानमंत्री का दावा सरासर झूठ है। हाथरस गैंगरेप केस मामले में आज CBI ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। CBI ने अपनी चार्जशीट में सभी आरोपियों पर पीड़िता के साथ गैंगरेप, हत्या और SC ST एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। वहीं UP की हाथरस पुलिस एक शिकायत के जवाब में PM ऑफिस को भेजे अपने लेटर में पीड़िता के साथ रेप होने की वारदात से साफ इनकार कर रही है। इसके साथ पुलिस FSL आगरा और JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ की रिपोर्ट का हवाला भी दे रही है। ये खबरें आप News 18 के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।